उद्घाटन कथन फिक्स्ड ओपनिंग नरेशन। एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
स्वागत। आज ज्ञान गोष्ठी में हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसे विचारक के विचारों में जिन्होंने 20वीं सदी की सोच पर कह सकते हैं कि एक अमिट छाप छोड़ी, मिशेल फुको।
हाँ बिल्कुल, फुको सिर्फ एक अकादमिक दार्शनिक नहीं थे, वो एक तरह के बौद्धिक पुरातत्ववेत्ता थे, है ना, जो समाज की अलग अलग परतों को खोदकर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि सत्ता, ज्ञान और सच का रिश्ता आखिर है क्या।
सही कहा। 1926 में फ्रांस में जन्मे पॉल मिशेल फुको, उनका काम हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि जिसे हम नॉर्मल मानते हैं या जिसे हम सच मानकर चलते हैं, वो बनता कैसे है।
बिल्कुल, और आज हम कोशिश करेंगे उनके कुछ जटिल लेकिन बेहद जरूरी विचारों को थोड़ा आसान करके समझने की, और ये भी देखेंगे कि आज हमारी दुनिया में उनके विचार क्यों इतने प्रासंगिक हैं।
हाँ, क्योंकि उनके विचार सिर्फ इतिहास की बात नहीं लगते, लेकिन पहले थोड़ा उस दौर की बात करें जिसमें फुको लिख रहे थे, क्योंकि किसी भी विचारक को उसके समय से अलग करके समझना मुश्किल होता है।
सही बात है। ये देखिए, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, फ्रांस में ना एक बौद्धिक उथल पुथल का माहौल था। पुराने विचार जैसे सार्त्र का अस्तित्ववाद, उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ रही थी।
हाँ, वो दौर जब हर चीज पर सवाल उठाए जा रहे थे।
बिल्कुल, और फिर संरचनावाद आ रहा था, लेवी स्ट्रॉस जैसे लोग, और सबसे बढ़कर मई 1968 के जो छात्र आंदोलन हुए फ्रांस में, उन्होंने तो जैसे पूरे सिस्टम को हिला दिया था।
अच्छा, तो फुको इसी माहौल के बीच थे।
हाँ, वो इन बहसों के केंद्र में थे और उन पर नीचे का काफी असर था, खासकर उनकी वंशावली पद्धति का। मतलब ये समझना कि हमारे मूल्य, हमारे विचार, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे, इनका एक इतिहास है।
और हाइडेगर का भी जिक्र आता है उनके प्रभावों में।
हाँ, हाइडेगर की तत्व मीमांसा की आलोचना, वो देरिदा, डेल्यूज, लकां जैसे बड़े नामों के समकालीन थे। ये सब मिलकर कहीं ना कहीं सार्वभौमिक सत्य और एक स्थिर मानव स्वभाव के विचार पर चोट कर रहे थे।
तो एक बहुत ही उत्तेजक बौद्धिक माहौल था। उनके निजी जीवन के बारे में क्या? क्या उसका भी उनके काम पर असर पड़ा? सुना है उनका शुरुआती जीवन थोड़ा मुश्किल था।
हाँ, ये बात सही है। एक संपन्न सर्जन परिवार में जन्म हुआ, लेकिन अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली होने के बावजूद निजी जीवन में संघर्ष थे। पेरिस के मशहूर एकोल नॉर्मल सुपीरियर में पढ़े, दर्शन और मनोविज्ञान,
ENS, जहां से फ्रांस के कई बड़े बुद्धिजीवी निकले।
वही। लेकिन इसी दौरान वो अवसाद से भी गुजरे। उस समय के माहौल में अपनी समलैंगिकता के साथ तालमेल बिठाना भी आसान नहीं था, यहां तक कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश भी की थी।
ओहो, ये तो काफी गंभीर बात है।
हाँ, और उनका जो शुरुआती सामना हुआ ना मनोरोग संस्थानों से, उसने पागलपन, सत्ता और समाज, किसी को कैसे बाहर कर देता है, इसमें उनकी गहरी रुचि पैदा कर दी। ये उनके पहले के काम में साफ झलकता है।
जैसे उनकी किताब मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में।
बिल्कुल, उसी में। फिर उन्होंने स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी में कल्चरल डिप्लोमेट के तौर पर भी काम किया। इससे उन्हें शायद फ्रांसीसी बौद्धिक दुनिया को बाहर से देखने का मौका मिला।
एक अलग नजरिया मिला होगा। और फिर 1968 का आंदोलन आया, आपने कहा वो एक अहम मोड़ था।
बहुत अहम। मई 68 ने उनके विचारों को और रेडिकल बनाया। वो ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए, खास तौर पर जेल सुधार के मुद्दे पर। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, GIP, ग्रुप डिनफॉर्मेशन सुर ले प्रिजोंस।
अच्छा, GIP, इसका क्या काम था?
इसका काम था जेलों के अंदर की जो अमानवीय स्थितियां थीं, उनकी जानकारी बाहर लाना, लोगों को बताना। तो आप देखिए, उनके लिए विचार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे, वो जमीन पर बदलाव भी लाना चाहते थे।
हाँ, ये उनके काम को एक अलग आयाम देता है, और करियर का शिखर शायद कॉलेज ऑफ फ्रांस की प्रतिष्ठित चेयर रही।
निश्चित रूप से, 1970 से 1984 तक वो कॉलेज द फ्रांस में विचार प्रणालियों का इतिहास के प्रोफेसर रहे। ये बहुत बड़ा सम्मान था।
चलिए, अब उनके कुछ बड़े कामों और विचारों पर आते हैं। शुरुआत मैडनेस एंड सिविलाइजेशन से करें। 1961 में आई थी ये किताब।
हाँ, ये उनकी शुरुआती दौर की बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसमें वो तर्क देते हैं कि जिसे हम मानसिक बीमारी कहते हैं ना, वो कोई हमेशा से मौजूद रहने वाली मेडिकल सच्चाई नहीं है।
मतलब?
वो कह रहे थे कि ये एक सामाजिक रचना है।
हाँ बिल्कुल, एक सोशल कंस्ट्रक्ट। वो दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानोदय के दौर में, जिसे हम तर्क का युग कहते हैं, उसी दौरान पागलपन को तर्क के एकदम विपरीत खड़ा कर दिया गया, उसे समाज से अलग थलग कर दिया गया।
ये तो काफी रेडिकल बात थी उस समय के लिए। बहुत। फिर आई द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966, जो फ्रांस में बेस्ट सेलर बन गई। इसमें उन्होंने अलग अलग ऐतिहासिक युगों में हमारी सोच को आकार देने वाले गहरे ढांचों का विश्लेषण किया। इनको वो एपिस्टीम कहते हैं।
एपिस्टीम
ये क्या है?
एपिस्टीम मतलब किसी युग का वो छिपा हुआ ज्ञान तंत्र या सोचने का फ्रेमवर्क, जो तय करता है कि उस दौर में क्या जानना संभव है, क्या सोचना संभव है। और इसी किताब में उन्होंने वो चौंकाने वाली बात कही थी कि मनुष्य खुद एक हालिया आविष्कार है
जो शायद मिट भी सकता है।
हाँ, ये पंक्ति तो बहुत मशहूर हुई, इसने काफी विवाद भी खड़ा किया होगा।
जाहिर है, इसने मानवी की नींव पर ही सवाल उठा दिया था। फिर उनकी एक और बहुत प्रभावशाली किताब है डिसिप्लिन एंड पनिश 1975।
हाँ, जेलों के इतिहास पर।
इसमें वो क्या तर्क देते हैं?
इसमें वो दिखाते हैं कि कैसे सजा देने का तरीके बदले हैं। पहले के जमाने में सजा सार्वजनिक होती थी, क्रूर होती थी, राजा अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था। लेकिन धीरे धीरे ये बदला। आधुनिक जेलें हैं ही, जहां सजा ज्यादा छिपी हुई होती है।
हाँ, और जोर शारीरिक कष्ट से हटकर निगरानी और अनुशासन पर आ गया। यही वो अनुशासनात्मक शक्ति, डिसिप्लिनरी पावर का विचार लाते हैं। ये वो शक्ति है जो लगातार निगरानी और नियमों के जरिए हमें नॉर्मल बनाती है,
जैसे स्कूल में, फैक्ट्री में, सेना में।
बिल्कुल। इसका मकसद है आज्ञाकारी शरीर, डॉसाइल बॉडीज तैयार करना। ऐसे व्यक्ति जो खुद ही नियमों का पालन करें, जो उत्पादक हों, जिन्हें नियंत्रित करना आसान हो।
और यही वो पेनोप्टिकॉन का उदाहरण देते हैं, है ना? वो गोल्ड जेल का डिजाइन।
हाँ, जेरेमी बेंथम का पेनोप्टिकॉन, जिसमें बीच में एक टावर होता है और चारों तरफ सेल। गार्ड टावर से सबको देख सकता है, पर कैदी ये नहीं जानते कि उन्हें किस वक्त देखा जा रहा है।
तो कैदी हमेशा ये मानकर चलते हैं कि उन पर नजर रखी जा रही है।
निगरानी के एहसास में जीते हैं, स्कूलों में, दफ्तरों में, अस्पतालों में, और अब तो डिजिटल दुनिया में भी।
सही कहा। सोशल मीडिया और डेटा कलेक्शन के इस युग में तो ये बात और भी ज्यादा सच लगती है।
बिल्कुल। और फिर उनकी एक और बड़ी किताब है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1 1976। ये भी काफी प्रोवोकेटिव थी।
इसमें उन्होंने सेक्सुअलिटी पर बात की। क्या मुख्य विचार था इसमें?
इसमें वो उस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि विक्टोरियन युग ने सेक्स को दबाया था, उस पर चुप्पी साध ली थी, जिसे वो दमनकारी परिकल्पना, रिप्रेसिव हाइपोथेसिस कहते हैं।
अच्छा, तो वो मानते थे कि ऐसा नहीं हुआ।
वो कहते हैं कि असल में हुआ इसका ठीक उल्टा। 19वीं सदी में सेक्स के बारे में बोलने, लिखने, रिसर्च करने, उसे क्लासिफाई करने का जैसे एक विस्फोट हुआ। डॉक्टर, मनोविज्ञानी, पादरी, कानूनविद सब इस पर विमर्श कर रहे थे।
पर क्यों? अगर दबाना नहीं था तो इतना विमर्श क्यों?
नियंत्रण के लिए। फूको का तर्क है कि ये सब सेक्स को जानने, वर्गीकृत करने और अंततः उसे प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए था। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, व्यक्तियों के व्यवहार को सामान्य बनाने के लिए।
वो ये विमर्श असल में शक्ति का ही एक रूप था।
हाँ, यही वो बायोपावर का महत्वपूर्ण विचार लाते हैं। ये आधुनिक सत्ता का वो तरीका है जो जीवन को ही अपना निशाना बनाती है। लोगों के शरीर, उनकी सेहत, उनकी आदतें, जन्म दर, मृत्यु दर, इन सबको प्रबंधित करना। ये सिर्फ मना करने वाली सत्ता नहीं, बल्कि जीवन को आकार देने वाली, उसे नियंत्रित करने वाली सत्ता है।
ये तो बहुत व्यापक विचार है। मतलब सत्ता सिर्फ सरकार या पुलिस तक सीमित नहीं है।
फूको के लिए तो बिल्कुल नहीं। यही उनका सबसे क्रांतिकारी योगदान है, सत्ता ज्ञान का अविभाज्य संबंध। वो कहते हैं, सत्ता ऊपर से थोपी गई चीज नहीं है, ये समाज के रेशे रेशे में फैली हुई है और ये ज्ञान से जुड़ी है। सत्ता और ज्ञान एक साथ, कैसे? देखिए, फूको कहते हैं कि सत्ता सिर्फ दमन नहीं करती, वो उत्पादन भी करती है। वो सच का उत्पादन करती है। वो तय करती है कि क्या ज्ञान है, क्या वैध है, क्या सच है। और जो ज्ञान पैदा होता है, वो बदले में सत्ता के रिश्तों को बनाए रखने या मजबूत करने में मदद करता है।
कोई उदाहरण दे सकते हैं?
जैसे मान लीजिए मनोविज्ञान, वो हमें बताता है कि सामान्य व्यवहार क्या है। ये ज्ञान हमें खुद को और दूसरों को समझने में मदद करता है, लेकिन साथ ही ये उन लोगों को परिभाषित और नियंत्रित करने का साधन भी बन जाता है जो इस सामान्य के दायरे से बाहर है। तो ज्ञान और सत्ता साथ साथ काम कर रहे हैं।
ये तो सोचने का एकदम अलग तरीका है।
तो वो विमर्श, डिस्कोर्स की बात करते हैं।
हाँ, विमर्श।
यानी भाषा, विचार और प्रथाओं का वो पूरा सिस्टम जो किसी समाज में किसी चीज के बारे में सच का निर्माण करता है, जैसे चिकित्सा का विमर्श, कानून का विमर्श, सेक्सुअलिटी का विमर्श, ये विमर्श तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं।
और इन विमर्शों को समझने के लिए ही वो अपनी मेथड्स इस्तेमाल करते थे, पुरातत्व और वंशावली।
सही, पुरातत्व से वो किसी दौर के विमर्श के छिपे हुए नियमों को उजागर करते हैं कि उस समय क्या सोचना और कहना संभव था, और वंशावली से वो वर्तमान की प्रथाओं और विश्वासों की जड़ों तक जाते हैं,
ये दिखाने के लिए कि ये चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी।
हाँ, ये दिखाने के लिए कि ये चीजें शाश्वत या प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से बनी है, अक्सर सत्ता संघर्षों के जरिए। इससे उनके सार्वभौमिक सत्य होने का दावा कमजोर पड़ जाता है।
और इसी सबसे जुड़ा है उनका विषयीकरण का विचार, मतलब हम कैसे एक खास तरह के विषय या व्यक्ति बनते हैं।
बिल्कुल, फूको दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग विमर्श और सत्ता की तकनीकें हमें खास तरह का व्यक्ति बनाती हैं। हम सीखते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। हम खुद ही अपने ऊपर अनुशासन लागू करते हैं। सत्ता सिर्फ बाहर से नहीं, हमारे अंदर से भी काम करती है, विकेंद्रीकृत है और सूक्ष्म स्तरों पर काम करती है।
जाहिर है, इतने बड़े और नए विचारों की आलोचना तो होनी ही थी। क्या मुख्य आलोचनाएं रही उनके काम की?
हाँ, कई आलोचनाएं हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो अपने तर्कों को फिट करने के लिए ऐतिहासिक सबूतों का थोड़ा चुनिंदा इस्तेमाल करते हैं या कभी कभी गलत व्याख्या कर देते हैं।
अच्छा, और दार्शनिक स्तर पर?
एक बड़ी आलोचना जो खासकर यूर्गन हाबरमास जैसे विचारकों ने की, वो ये है कि अगर सब कुछ सत्ता और विमर्श का खेल है और कोई वस्तुनिष्ठ सत्य या तर्कसंगतता नहीं है, तो फिर हम किसी चीज की आलोचना किस आधार पर करेंगे?
प्रतिरोध या मुक्ति का आधार क्या होगा?
अगर सब कुछ सत्ता है तो हम उसके बाहर कैसे खड़े हो सकते हैं?
ये एक मुश्किल सवाल है।
हाँ, ये फूको के काम को लेकर एक लगातार चलने वाली बहस है। इसके अलावा उनके निजी जीवन के कुछ पहलू और ईरान की क्रांति पर उनकी शुरुआती कुछ हद तक सकारात्मक टिप्पणियों को लेकर भी विवाद रहे हैं।
हाँ, इन विवादों का जिक्र करना जरूरी है, भले हम उन पर कोई फैसला न सुनाएं, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद उनका प्रभाव तो जबरदस्त रहा है।
ओ बिल्कुल, वो 20वीं सदी के सबसे ज्यादा उद्धृत साइटेड विचारकों में से एक है। उनका असर दर्शन के बाहर भी बहुत ज्यादा है, समाजशास्त्र, इतिहास, साहित्य सिद्धांत, क्वेयर थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, जेंडर स्टडीज, विकलांगता अध्ययन, लिस्ट लंबी है।
उन्होंने संस्थानों को, जैसे स्कूल, अस्पताल, जेल को देखने का एक नया औजार दिया।
हाँ, और उनकी प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है। सोचिए, आज की दुनिया में बड़े पैमाने पर निगरानी, डेटा कैसे जमा हो रहा है, सोशल मीडिया हमारी पहचान कैसे बना रहा है, पब्लिक हेल्थ की राजनीति, जैसे कोविड के समय हमने देखा जेंडर और पहचान को लेकर जो बहसें चल रही हैं।
इन सब में फूको के विचार एक लेंस की तरह काम करते हैं, है ना?
बिल्कुल, वो हमें इन चीजों के पीछे काम कर रही सत्ता की गतिशीलता को समझने में मदद करते हैं। और उनका काम आज भी कई सामाजिक आंदोलनों को प्रेरणा देता है, जैसे जेल उन्मूलन या LGBTQ+ अधिकारों की लड़ाई।
उनका कोई खास कथन जो उनके विचारों का निचोड़ बताता हो?
एक बहुत मशहूर है उनकी हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी से, जहां सत्ता है वहां प्रतिरोध है, और फिर भी, या यूं कहें कि परिणाम स्वरूप या प्रतिरोध कभी भी सत्ता के संबंध में बाहरी स्थिति में नहीं होता है।
ये थोड़ा जटिल है, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि सत्ता सर्वव्यापी है, उससे पूरी तरह बाहर निकलना शायद संभव नहीं, लेकिन ठीक इसीलिए क्योंकि सत्ता हर जगह है, प्रतिरोध भी कहीं से भी उभर सकता है उसी सिस्टम के भीतर से। प्रतिरोध सत्ता का दूसरा पहलू है, उसका हिस्सा है।
अच्छा, मतलब प्रतिरोध हमेशा सत्ता के साथ एक तरह के तनाव में रहता है।
हाँ, और एक और बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी जो उनके काम के मकसद को साफ करती है। उन्होंने कहा, मेरा काम लोगों को यह दिखाना है कि वे जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक स्वतंत्र हैं, कि लोग कुछ विषयों को सत्य प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं जिन्हें इतिहास में एक निश्चित क्षण में बनाया गया है, और इस तथाकथित प्रमाण की आलोचना की जा सकती है और इसे नष्ट किया जा सकता है।
ये तो काफी उम्मीद जगाने वाली बात है। मतलब वो हमें सिर्फ ये नहीं दिखा रहे कि हम कैसे बंधे हुए हैं, बल्कि ये भी कि इन बंधनों को तोड़ा जा सकता है।
बिल्कुल, उनका लक्ष्य मुक्तिदायी था, यह दिखाना कि जिन चीजों को हम जरूरी या प्राकृतिक मान लेते हैं वो अक्सर बदली जा सकने वाली ऐतिहासिक रचनाएं हैं।
उनके बारे में कुछ और रोचक बातें भी हैं। कहते हैं उन्हें संगीत का शौक था।
हाँ, वो हार्पसिकॉर्ड बजाते थे और एक समय संगीत में करियर बनाने का भी सोच रहे थे, ये कम लोग जानते हैं।
और उन्होंने अपनी पहली किताब के लिए एक पागलखाने में रात की ड्यूटी करते हुए रिसर्च की थी।
हाँ, ये भी सच है। इससे उनके काम को एक अलग ही प्रामाणिकता मिलती है। और 1975 में कैलिफोर्निया की डेथ वैली में LSD लेने का अनुभव उनके लिए बहुत गहरा और परिवर्तनकारी रहा, ऐसा उन्होंने खुद कहा है।
अच्छा, और उनका वो लुक, टकला सिर, तार वाले चश्मे, काला टर्टलनेक स्वेटर, वो भी काफी पहचाना जाने वाला बन गया था।
हाँ, वो अपने जमाने के सबसे पहचाने जाने वाले बौद्धिक चेहरों में से एक थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था जब लोग उनके नाम का इस्तेमाल विशेषण की तरह करते थे, फूकोडियन या फूकोवादी।
क्यों?
उन्हें डर था कि इससे उनके विचार एक बंद कठोर सिद्धांत बन जाएंगे, जबकि उनके काम का मकसद तो हमेशा सवाल उठाते रहना था, चीजों को खोलते रहना था, न कि उन्हें बंद करना।
तो अंत में अगर हमें फूको के योगदान को समेटना हो तो क्या कहेंगे, वो हमें क्या देकर गए हैं?
मेरे ख्याल से वो हमें सत्ता को देखने का एक नया चश्मा दे गए हैं। ये समझने का तरीका कि सत्ता कैसे अदृश्य रूप से काम करती है, कैसे वो ज्ञान रचती है और कैसे वो हमें, हमारी पहचान को गढ़ती है।
वो हमें तैयार जवाब नहीं देते बल्कि सवाल पूछते हैं।
हाँ, वो हमारे सबसे बुनियादी विश्वासों पर सवाल उठाने का एक स्थायी निमंत्रण है। सच क्या है, तर्क क्या है, सामान्य क्या है, नैतिकता कहाँ से आती है?
और वो हमें ये दिखाते हैं कि जिसे हम प्राकृतिक या जरूरी मान लेते हैं वो अक्सर बनाया गया होता है।
बिल्कुल, और अगर वो बनाया गया है तो उसे बदला भी जा सकता है। शायद यही उनके काम की सबसे बड़ी ताकत है, आलोचनात्मक सोच और बदलाव की संभावना का रास्ता दिखाना।
तो फूको हमें अपनी मान्यताओं पर, अपने समाज की संरचनाओं पर और खुद अपने ऊपर सवाल उठाने के लिए उकसाते हैं, ये सोचने के लिए कि क्या चीजें वाकई वैसी हैं जैसी दिखती हैं या जैसी हमें बताई जाती हैं।
हाँ, और ये सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं, शायद पहले से भी ज्यादा।
समापन कथन, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।